की श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 12 श्लोक संख्या 11 अध्याय का शीर्षक है वृतासुर की यशस्वी मृत्यु। पुरुषः प्रकृतिः व्यक्तं आत्मा भूत इंद्रिय आश्यः शक्नुवन्ति अस्य सर्गादौ न विना यत् अनुग्रहः। पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तम् आत्मा भूतेन्द्रियाशयः शक्नुवन्ति अस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहः। पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तम् आत्मा भूतेन्द्रियाशयः शक्नुवन्ति अस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहः। पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तम् आत्मा भूतेन्द्रियाशयः शक्नुवन्ति अस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहः। बोलिए। समस्त भौतिक शक्ति का जनक प्रकृति माया या भौतिक प्रकृति व्यक्तम अभिव्यक्ति के मूल कारण महत्त्व आत्मा अहंकार भूत पांच तत्व इंद्रिय 10 इंद्रिया आशय मन बुद्धि तथा चेतना शक्नुवन्ति समर्थ हैं अस्य इस ब्रह्मांड के सर्गादौ सृष्टि इत्यादि में ना नहीं विना रहित यत् जिसकी अनुग्रहात कृपा से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। तीनों पुरुष कारण दक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु तथा शिरोदक्षाय विष्णु प्रकृति समग्र शक्ति महत्त्व अहंकार पांचों भौतिक तत्व इंद्रियां मन बुद्धि तथा चेतना ये सब श्री भगवान के आदेश के बिना भौतिक जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। तात्पर्य सुनिए। जैसा कि विष्णु पुराण में पुष्टि की गई है परस्य भ्रमणा शक्ति तथेदम अखिलम जगत। हम जितनी भी अभिव्यक्तियों का अनुभव करते हैं वे श्री भगवान की शक्तियां हैं। ये शक्तियां स्वतंत्र रूप से कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद्गीता में इस प्रकार की है। मया दक्षेण प्रकृति ही सुयते से चराचरम हे कुंती पुत्र ये भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश से कार्यशील है और समस्त जड़ चेतन प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। केवल श्री भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जो 24 तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं जीवात्मा के लिए विभिन्न स्थितियां उत्पन्न करती हैं। वेदों में भगवान का कथन है मदीयम महिमानम च परब्रह्मेति शब्दितम वेस्ति अस्य अनुगृहितम मे संप्रश्न नैवृतम यदि। क्योंकि प्रत्येक वस्तु मेरे शक्ति का प्राकट्य है इसलिए मुझे परब्रह्म के रूप में जाना जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को मुझसे मेरे अपने महिमामय कार्यों को सुनना चाहिए। भगवद्गीता 10:2 में भी भगवान ने कहा है अहम आदिहि देवानां मैं समस्त देवताओं का मूल हूं। अतः श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के मूल आदि हैं और कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है। श्रील मध्वाचार्य भी कहते हैं अनिश जीव रूपेण जीवात्मा अनिश होता है वह नियामक कभी नहीं होता वह सदैव अधीनस्थ रहता है। अतः जब कोई जीवात्मा स्वतंत्र ईश्वर या भगवान होने का अभिमान दिखाता है तो इससे उसकी मूर्ता समझनी चाहिए। ऐसी मूर्ता का वर्णन अगले श्लोक में हुआ है।
हरे कृष्ण। फिर से एक बार अनुवाद पढ़ देते हैं। तीनों पुरुष कारुण दक्षाय विष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु तथा शिरो दक्षाय विष्णु, प्रकृति समग्र शक्ति महत्त्व अहंकार, पांचों भौतिक तत्व इंद्रियां मन बुद्धि तथा चेतना, ये सब श्री भगवान के आदेश के बिना भौतिक जगत की सृष्टि नहीं कर सकते। तो ये वृत्तासुर की यशस्वी मृत्यु का इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो ये प्रारंभ हो चुका था वृत्तासुर और इंद्र के बीच में, और युद्ध के बीच में वृत्तासुर ने भी प्रवचन दिया। तो ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य है कि जिसमें युद्ध के समय युद्ध चल रहा है और बीच में प्रवचन शुरू हो गया। नहीं तो हमने बताया था पिछली बार भी कि सामान्य रूप से ये होता नहीं है कि किसी के साथ आप युद्ध कर रहे हैं और बीच में प्रवचन शुरू कर दें। धर्म युद्ध में हो सकता है शायद, लेकिन अधर्म के आधार पर जो युद्ध होते हैं आज के समय में, ऐसे प्रवचन का कोई स्कोप नहीं होता। तो इस तरह जब वृत्तासुर ने वृत्तासुर के ऊपर प्रहार किया था, वृत्तासुर ने प्रहार किया था इंद्र के ऊपर अपने गदा के द्वारा, और उस तरह से इंद्र के हाथ में जो वज्र था वो हाथ से गिर गया है ना। तो उसके उपरांत ही वृत्तासुर ने यह प्रवचन शुरू किया। तो प्रवचन में क्या क्या बातें बताई, तो इस पर बड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। तो प्रवचन में बताया वृत्तासुर ने कि परम भगवान, उन्होंने कहा कि वो सभी कारणों के कारण है और जय और पराजय के भी वही कारण है। परम भगवान किसके कारण है? जय और पराजय के दोनों के कारण है। और क्योंकि मूर्ख लोग जो है, धूर्त लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, वो नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कि भगवान ही सबके कारण है, और इसलिए वो सारा श्रेय सारा क्रेडिट जो है वो अपने लिए लेना चाहते हैं। तो इस तरह से बताया गया है। लेकिन ये जान लें कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव जो है भगवान के अधीन है, भगवान के नियंत्रण में है। यहां तक कि पुरुष और प्रकृति ये भी दोनों जो है भगवान के अधीन है। पुरुष कौन है? जैसे पुरुष अवतार के बारे में बताया, ये तीन पुरुष अवतार बताए गए हैं, तो ये सब भी भगवान के अधीन है। प्रकृति भी भगवान के अधीन है, और साथ में उनके निरीक्षण में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ कार्य चल रहा है उनके निरीक्षण में। और ये न जानते हुए कि परम भगवान का हाथ जो है सभी जगह पर है, एक मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वही नियंता है, वही नियामक है, वही सब कुछ करने वाला है ना। तो लेकिन जब कोई जान जाता है कि परम नियंता परम भगवान ही सब नियंता करने वाले, नियंत्रण करने वाले हैं, तो वो संसार के द्वंद से मुक्त हो जाता है, शोक से, भय से, हर्ष से, हर प्रकार के द्वंद से वो मुक्त हो जाता है, निर्मल हो जाता है उसका हृदय। और इस तरह से वृत्तासुर ने यह प्रवचन दिया। बड़ा ही सुंदर प्रवचन वृत्तासुर का था, हालांकि वहां पर कोई रिकॉर्डिंग की कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन श्रील व्यासदेव जी ने इसको रिकॉर्ड किया है श्रीमद भागवत की में, ताकि हम लोग उसको सुन सकें इस प्रवचन को, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर प्रवचन रिकॉर्ड होता है तो उसको दोबारा सुनना भी बहुत जरूरी है। कई भक्तों की आदत है वो केवल रिकॉर्डिंग करते रहते हैं पूरे जीवन भर, है ना। बोलते हमारे पास 1000-2000 प्रवचन हैं प्रभुपाद जी के, शायद एक भी नहीं सुना उसमें से। तो ऐसे रिकॉर्डिंग का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा नित्यम भागवत सेवया, कि जो रिकॉर्डिंग हो चुकी है आज से कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, वो सारी रिकॉर्डिंग श्रीमद् भागवत में है, श्रील व्यासदेव जी के द्वारा रिकॉर्डेड है। तो हमारा कर्तव्य उसको सुनना, श्रवण करना। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, चारे चाहे से ना चाहे से ताहे खोरे नृत्य। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी? परम भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण ही वास्तव में परम नियंता है, बाकी सब क्या है? उनके सेवक हैं, उनके नौकर हैं, कोई भी हो, और जैसे वो नचाना चाहे नाचना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं? जारे जाए छे नचाए से ताए छे खोरे नृत्य, चेतन चरतामृत में ऐसा दिया है। तो इसमें सभी आ जाते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस आदि लीला में ये बता रहे हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण परम नियंता हैं, और यहां तक कि उनके जो विस्तार हैं, एक्सपेंशन हैं, या पुरुषा एक्सपेंशन हैं, या उनके अवतार हैं, गुण अवतार हैं, लीला अवतार हैं, मनमंत्र अवतार हैं, युग अवतार हैं, जो भी अवतार हैं इस संसार के भी, तथाकथित जो भी अवतार हैं इस पृथ्वी में भी, वो सारे के सारे जो हैं परम भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, यहां तक कि अवतार भी जो हैं वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। बलराम जी स्वयं सेवा करते हैं, है ना, बलराम जी श्री कृष्ण के चरण दबाते हैं, और यहां तक कि जो है उनके शैया के रूप में और एक बेबी के रूप में, पादुका के रूप में, छत्री के रूप में जहां पे विश्राम करते हैं उस स्थान में, इस तरह से बलराम जी जो है कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जब बलराम जी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो हम कौन से खेत की मूली हैं, हाँ बताइए, ये सोचने वाली बात है। बलराम जी फर्स्ट एक्सपेंशन है कृष्ण के, आप सब जानते ही हैं, यहां पर भी हैं बलराम जी, दर्शन दे रहे हैं आपको, पीछे देखिए। तो बलराम जी कृष्ण के पहले विस्तार हैं, साथ में खड़े हुए हैं, वो उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन मूर्ख जीव जो है, बद्ध जीव जो है, वो सोचता है कि वही वास्तव में करता है, वही नियंता है, वही मालिक है, वही उपभोक्ता है, वही एंजॉयर है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही नारायण हूं, मैं ही कृष्ण हूं, है ना। तो कितने दुखी बात है, माया का प्रभाव बताते हैं, जो मायावाद का जो जंगल है ये पृथ्वी में है, स्वर्गलोक में नहीं है। ये मायावाद का जंगल पृथ्वी में है, इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने कहा कि मैं तो आया था श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन मेरा पूरा जीवन मायावाद के जंगल को काटने में ही बीत गया। कितने दुखी बात। तो ये मायावाद जो है बहुत खतरनाक सिद्धांत है, सिद्धांत ही नहीं है, वास्तव में कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं प्रत्येक जो अवतार हैं, विस्तार हैं, सब सेवा भगवान की कर रहे हैं। अनंत शेष भी जो है शैया के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान ही एकमात्र उपभोक्ता है। क्यों? जो मालिक है वही उपभोक्ता होगा, ओनर ही एंजॉयर होता है। आप किराए के मकान में रहते हैं तो वहां पर आपका एंजॉयमेंट सीमित होता है कि नहीं? क्योंकि मकान मालिक नीचे बैठा है या ऊपर बैठा है या कहीं पर है। तो भोक्ता कौन हो सकता है? जिसकी संपत्ति हो, जिसका सब कुछ हो। ईशावाशाम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जो भी आपको देख रहे हैं संसार में, सृष्टि में, इस पृथ्वी में, चर और अचर जो भी हैं, जीवित हो, जड़ हो, जो भी दिखाई देता है, जो नहीं भी दिखाई देता है, वो सब भगवान का है, भगवान के नियंत्रण में। तो इस प्रकार जो है ईश्वर कई हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर परम भगवान श्री कृष्ण हैं। देखिए यहां पर तीन जो विष्णु के जो विस्तार हैं उनका वर्णन किया है श्लोक में। वृत्तासुर यहां पर बता रहे हैं शिरोदक्षाय विष्णु, गर्वदक्षाय विष्णु, कारुणदक्षाय विष्णु, तो इनके बारे में बता रहे हैं। तो सातवें तंत्र में क्या दिया है? विष्णु स्तुत्रीणी रूपाणी पुरुषाख्यानी अधो विधु एकम तु महता सृष्टि द्वितीयम तु अंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानी ज्ञातवा मुच्यते। इसका भगवदगीता के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने ये श्लोक उदित किया है और सातवें तंत्र से। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि परम भगवान जो विष्णु हैं, भगवान विष्णु जो है उनके पुरुष अवतार हैं, पुरुष रूप हैं। पहले जो है वो महाविष्णु हैं जो इस पूरी भौतिक सृष्टि के रचयिता हैं महत्त्व के, और दूसरे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु जो ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश करते हैं, और शिरोदक्षाय विष्णु जो प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं परमात्मा के रूप में। तो श्री संप्रदाय का भी ये मत है, और अगर आप गहराई से देखें श्रीमद् भागवत को पढ़ें तो आप समझ में आएगा कि वास्तव में जो तीन विष्णु के एक्सपेंशन हैं, पुरुषा अवतार जिसको कहते हैं, वो सारे एक्सपेंशन जो है वास्तव में वैकुंठ के अंदर नहीं है। कारुणदक्षाय विष्णु कारण सागर में है, गर्भोदक्षाय विष्णु गर्भोदक सागर में है, शिरोदक्षाय विष्णु शीर सागर में है, है कि नहीं। फिर भी भगवान जहां पर भी हैं वो स्थान वैकुंठ है, लेकिन वो जो आदि वैकुंठ है, वैकुंठ धाम जिसको कहते हैं, वहां पर तो नारायण है, लक्ष्मी नारायण है, है ना। तो ये जो नारायण है, वैकुंठ नारायण, ये एक विलास विस्तार है परम भगवान श्री कृष्ण के, विलास एक्सपेंशन जिसको कहते हैं। तो ये विलास एक्सपेंशन क्या है, श्री रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में बताया है। रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में बता रहे हैं, स्वरूपम अन्याकरम यत् तस्य भाति विलासतः प्रायणात्मा समम शक्तिया स विलासो निगद्यते। जब परम भगवान इस रूप में प्रकट होते हैं और उनके उस मूल रूप से यानी कृष्ण का जो रूप है उससे थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन फिर भी लगभग सारे गुण होते हैं, जैसे 60 दिव्य गुण पाए जाते हैं नारायण में और 64 दिव्य गुण पाए जाते हैं कृष्ण में, तो ऐसे रूप को विलास एक्सपेंशन कहा जाता है, विलास विस्तार कहा जाता है। इसलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि व्यासदेव बड़े बुद्धिमान हैं, उन्होंने नारायणस्तु भगवान स्वयं नहीं बोला, उन्हें नारायणस्तु भगवान स्वयं नहीं बोला है, उन्हें कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चाम शा कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयंत युगे युगे। कि सब अंश कला विस्तार है, ये सब प्लेनरी एक्सपेंशन है, लेकिन कृष्ण जो है वो इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, स्वयं भगवान। तो श्रील गोस्वामी आगे समझा रहे हैं इसमें, तो स्वयं भगवान का मतलब क्या है, स्वयं रूप का मतलब क्या है। स्वयं रूप का मतलब यह है कि ऐसा रूप जो स्वयं ही है और किसी अन्य रूप के ऊपर आश्रित नहीं है। स्वयं रूप का अर्थ है कि उनको अपना रूप धारण करने के लिए, अपना विस्तार करने के लिए किसी अन्य रूप के ऊपर आश्रित नहीं है। ये जो तीन पुरुष अवतार हैं, शिरोदक्षाय विष्णु, कारुणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, ये सब कृष्ण के ऊपर निर्भर है। उनका रूप जो है कृष्ण के ऊपर निर्भर है, कृष्ण सोर्स है उसके, लेकिन कृष्ण जो है उनका कोई सोर्स नहीं है, कृष्ण के स्वरूप का कोई सोर्स नहीं है। तो स्वयं रूप का मतलब यह है कि और किसी अन्य रूप के ऊपर निर्भर नहीं है कृष्ण का रूप, तो वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इस प्रकार हवा चल रही है, तो ये सेल्फ सफिशिएंट फॉर्म है ना, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, पूर्ण एकदम। तो 64 दिव्य गुण पाए जाते हैं जो किसी अन्य रूप में नहीं पाए जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत का विषय ही है परम भगवान श्री कृष्ण, भगवद्गीता का भी वही विषय है परम भगवान श्री कृष्ण, है ना। हमारे वैदिक शास्त्रों का भी विषय ही है परम भगवान श्री कृष्ण। भागवत के जो 10 विषय हैं उसमें जो 9 विषय हैं वो किसका आश्रय लेते हैं, उनके आश्रय कौन है, परम भगवान श्री कृष्ण। जन्मादि यस्य यथोन्मयादि तरतश्च अर्थेषु अभज्ञासुरा तेन ब्रह्म हृदयादि कवे मुह्यन्ति यसूरया तेजवारि मृदाम यथा विनिमयो त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेना निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, ये गायत्री मंत्र है। ये गायत्री मंत्र सत्यम परम धीमहि का मतलब है धीमहि हम ध्यान लगाते हैं, किसमें, परम भगवान श्री कृष्ण में जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ का मतलब है कि ऐसे सत्य में कोई द्वंद नहीं है, ऐसा सत्य हमेशा के लिए सत्य रहेगा, ऐसा सत्य परम सत्य है और ऐसा सत्य हमेशा के लिए सत्य रहेगा, उसको कभी झूठा साबित नहीं कर सकते आप वोक्स पॉपुली से, वोटिंग से, है कि नहीं। ये नहीं कि आज जो है वोट डाला किसी बीजेपी को, कल डाला कांग्रेस को या किसी और पार्टी को डाला तो वो गए पावर में आ गए, लेकिन कृष्ण जो है वो किसी वोट या वोक्स पॉपुली के द्वारा जो है वो परम भगवान नहीं है, वो थे और हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। आपको दिक्कत है, अगर आपको दिक्कत भी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो फिर भी परम भगवान श्री कृष्ण है कि नहीं, वो फिर भी आदि कारण बने ही रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार ये जो कई विषय हैं भागवत के, सर्ग विसर्ग, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उति मनमंत्र ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 विषय हैं श्रीमद् भागवत के। तो इस प्रकार ये 10 विषय भागवत के, जो 10 विषय हैं उसमें जो 10वां विषय है आश्रय, वो परम भगवान श्री कृष्ण, सम्भव बोनम जिस प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद ने 10th कैंटो का जो टाइटल दिया है आप देखेंगे सम्भव बोनम, तो सम्भव बोनम क्या है, स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है। अब थोड़ा सृष्टि के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें कि सृष्टि की रचना कैसे होती है, जिसकी व्याख्या श्रील जी गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में बड़े सुंदर तरीके से दिए हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में भी और समझाने में भी, तो थोड़ा सहन करना पड़ेगा आपको हमारे साथ। तो भौतिक सृष्टि जो है वो जब अव्यक्त हो जाती है, अव्यक्त रहती है, जो मेटेरियल क्रिएशन जो अनमैनिफेस्ट स्टेट में होता है उसको प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान। अनमैनिफेस्ट स्टेट जो है मेटेरियल क्रिएशन का, मेटेरियल एनर्जी का, उसको प्रधान कहते हैं। और जो डिस्टर्ब स्टेट है प्रकृति का, एजिटेटेड स्टेज है, वो उसको महातत्व कहते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, हालांकि उदाहरण जो है ब्रह्मचारी भक्तों के लिए नहीं है, लेकिन समझने के लिए जरूरी है, प्रभुपाद का दिया हुआ है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक स्त्री जो है उसको छोड़ के जा रहा है पति बहुत लंबे समय तक, और वापस जब आता है तो पत्नी विश्राम कर रही है और पति जो है उस पत्नी को, अपने पत्नी को जगाता है। तो जगाने के बाद क्या होता है, जगाने की जो अवस्था है वो है महातत्व। तो जब तक वो विश्राम कर रही थी वो है प्रधान, उत्तेजित अवस्था, जागरूक अवस्था, उत्तेजित अवस्था। इस तरह एजिटेटेड स्टेट है जो प्रधान का, उसको महातत्व कहते हैं। और ये जो महातत्व है ये अहंकार उत्पन्न करता है। लेकिन देखिए महातत्व को कई बार चित्त भी बताया गया, चित्त की बात की गई है। चित्त का मतलब होता है, यहां चित्त का मतलब है कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस, दूषित चेतना। भगवान कपिल देव ने भागवत के तृतीय स्कंद में चार लेयर्स बताए हमारे, एक मन बताया, बुद्धि बताया, अहंकार बताया, और चौथा बताया उन्होंने चित्त, कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। तो कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस का मतलब यह है कि महत्तत्व जो जागृत अवस्था जो महत्तत्व की है, वो जो चेतना है, उस तरह की जो चेतना, विकसित चेतना अंदर आ रही है, वो दूषित चेतना है। सुन रहे, जैसे एक शिशु है, एक बद्ध जीव माता के गर्भ में है, बताते हैं सेवेंथ मंथ में, भगवान कपिल देव भी समझा रहे हैं भागवत के तृतीय स्कंद में कि सेवेंथ मंथ में, सातवें महीने में, आज के मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया है, लेकिन भागवत में पहले से लिखा गया है। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से जो वो बद्ध जीव है, जब उसको चेतना जागृत होती है, उसकी चेतना जब जागृत होती है तो पीड़ा शुरू शरीर में शुरू होती है, पीड़ा को समझ पाता है, हां कितने शरीर में पीड़ा हो रही है। तो वो जो अवस्था है, जो चेतना की अवस्था है, वो दूषित चेतना है, कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। तो इसलिए कई बार महत्तत्व को भी चित्त बोल दिया जाता है। जो चेतना जो लेयर है, जो चित्त है, जो कॉन्शियसनेस है, जो फोर्थ लेयर है, जो चौथा लेयर है, ये कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। इस चेतना में ही, इस दूषित चेतना में ही हमारे कई संस्कार छुपे रहते हैं। चेतना में क्या छुपे रहते हैं? मन में नहीं। कई बार बोलते हैं मन हमारा दूषित है, मन तो दूषित है, लेकिन मन जो है बेसिकली प्रोसेसिंग एलिमेंट है। मन क्या है? प्रोसेसिंग एलिमेंट है केवल, लेकिन एक्चुअली जो संस्कार होते हैं वो चेतना में होते हैं। इतने डीप रूटेड है, सोच के देख लिए, इतने नजदीक नहीं है मन के पास। मन, बुद्धि, अहंकार, फिर चेतना, उस चेतना में हमारे संस्कार दबे हुए हैं। कितने जन्मों के? करोड़ों करोड़ों जन्मों के। अब जब तक वो संस्कार नष्ट नहीं होंगे जो हमारी दूषित चेतना में है, तब तक जो है दृढ़तापूर्वक भजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। तो इसलिए जो पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस है कृष्ण भावना का, इस चेतना को शुद्ध करने का है, रिवाइवल ऑफ ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी कहते। तो इस प्रकार इस बात को समझने का प्रयास करें। अब महत्तत्व जो है बेसिकली फॉल्स ईगो को उत्पन्न करता है, महत्तत्व जो है फॉल्स ईगो को उत्पन्न करता है। और ये जो फॉल्स ईगो है ये बेसिकली तीन प्रकार के बताए गए अहंकार। पहला अहंकार बताया, तत्व संदर्भ में इसकी व्याख्या बड़ा अच्छे तरीके से की है श्रील जी गोस्वामी ने। पहला बताया वैकाकिक अहंकार। तो अहंकार जो सत्व गुण में होता है वो मन को उत्पन्न करता है, और जो इस सृष्टि के जो अधिष्ठाता हैं, डेमीगॉड्स हैं, प्रिजाइडिंग डीटीज हैं मेटेरियल क्रिएशन में, इसको उत्पन्न करने वाला है जो सत्व गुण का अहंकार है। तो इसलिए देवताओं में आप देखते हैं कि उनमें सत्वगुण का अहंकार होता है, अहंकार होता है उनमें भी लेकिन सत्वगुण का अहंकार होता है। तो इस प्रकार ये बताए वैकाकिक अहंकार, और उसके बाद तेजस अहंकार, दूसरा है तेजस, तेजस अहंकार। तो ये जो है रजोगुण से प्रभावित होता है ये अहंकार, और ये बुद्धि को उत्पन्न करता है और इंद्रियों को उत्पन्न करता है, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। लेकिन ध्यान रहे यहां जो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं ये सेंस ऑर्गन्स नहीं है। ये भागवत में भी वर्णन है और श्री श्रीजी गोस्वामी ने बताया कि बेसिकली ये जो सेंसेस हैं सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा करती हैं, हमेशा ट्रैवल करती हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो बेसिकली ये इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में भी होती हैं, याद रहे हमें, केवल मन बुद्धि अहंकार से शरीर नहीं बना केवल, बल्कि सूक्ष्म इंद्रियां भी होती हैं, सूक्ष्म शरीर जो आत्मा के साथ यात्रा करती है, क्योंकि जो स्थूल इंद्रियां हैं वो तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो सटल सेंसेस इसको कहते हैं। अब क्या होता है कि जब काल शक्ति जो है तामस अहंकार में, तीसरा अहंकार के बताया तामस अहंकार, फॉल्स ईगो इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, जिसमें निद्रा आ रही है हमें, कई बार प्रवचन के दौरान निद्रा आ जाती है या जब के समय निद्रा आती है, नहीं तो ये सब तमोगुण का लक्षण है। तो जो भी है तो तामस अहंकार, तामस अहंकार से क्या उत्पन्न होता है, शब्द उत्पन्न होता है, शब्द शब्द उत्पन्न होता है, और उसके द्वारा जो है खम उत्पन्न होता है, उसके बाद फिर करण उत्पन्न होता है, और इस तरह से जो फिर खम जो है वो स्पर्श को उत्पन्न करता है, उसके बाद वायु उत्पन्न होता है, उसके बाद त्वचा उत्पन्न होती है, त्वचा विकसित होती है, इस तरह से अग्नि जो है फिर रस को उत्पन्न करता है, और जल और फिर जीवा ये विकसित होती है, और उसके बाद जल जो है फिर वो गंध को उत्पन्न करता है, और उसके बाद फिर भूमि और नासिका विकसित होती है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन महाविष्णु को क्या करना पड़ता है, सईक्षिता सहस्र जाता, इस प्रकार से उपनिषद में दिया है कि वो केवल दृष्टिपात करते हैं, जस्ट लैंसेस ओवर द मेटेरियल नेचर एंड इंप्रेग्नेट्स द मेटेरियल नेचर विद कंडीशन सोल्स, बद जीवात्माओं को भेद देते हैं इस तरह से इस भौतिक सृष्टि में, है ना। तो महाविष्णु की दृष्टि ही पर्याप्त है। तो ये महाविष्णु की दृष्टि क्या है, महाविष्णु की यह दृष्टि है सदाशिव, उसको कार्य रूप देने के लिए महाविष्णु की दृष्टि है सदाशिव, और सदाशिव जो है वो बहिरंगा शक्ति का संसर्ग करते हैं, फिजिकल एसोसिएशन होता है उनका, और उनके वीर से असंख्य जीव जो है ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, यह है शिवलिंग। हमें लोग बोलते हैं शिवलिंग है क्या, यह शिवलिंग है। तो शिवलिंग क्या है, वास्तव में महाविष्णु की दृष्टि। तो महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं, शिवजी जो है वो बहिरंगा शक्ति का संसर्ग करते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी का, और इस तरह से उनका संसर्ग करते हैं, तो उनके वीर्य से जो है असंख्य जीव जो है इस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इस दृष्टि से शिवजी हमारे जगत पिता हैं, और दुर्गा जी को इसलिए माता बताया गया, सही बात है। हालांकि लोग जो है सेंटिमेंटली उनको माता करके बुलाते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली है वस्त्र सिद्धांत कि वो है माता, वास्तव में भौतिक जगत में वो माता है, इसलिए इस धाम को देवी धाम बताया गया है। दुर्गा जी का यहां वास, प्रिजाइडिंग डीटी है इस मेटेरियल क्रिएशन की, दुर्गा। तो इस प्रकार से, लेकिन भगवान गीता में क्या बता रहे हैं, मया अध्यक्ष है न प्रकृति सुएते से चराचरम हेतु नाने कौंतया जगत विपरिवर्तते, ये प्रकृति ये दुर्गा जी जो है मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। लेकिन कार्य कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को सब कुछ करना पड़ता है। महाविष्णु तो दृष्टिपात करते हैं, भगवान कृष्ण को तो दृष्टिपात करने की भी आवश्यकता नहीं है। हरी हरी। तो क्या करते हैं कृष्ण, वो तो क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, रासलीला में मग्न है वो, तो उनको समय नहीं है, माखन चोरी कर रहे हैं वो, उनको क्या पता है यहां चल रहा है, जो भी पता है उनको सब कुछ, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। महाविष्णु दृष्टिपात करो, दृष्टिपात करो ना करो, उनसे कोई कंसर्न नहीं है, उनका तो बस अपना आनंद ले रहे हैं, लीला में मग्न है वो। भगवान कौन है, परम भगवान कौन है, जिसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, समझ लीजिए आप। तो भक्त भी अगर सोचे कि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसका मतलब आप भी भगवान है, वहां से मायावाद दर्शन शुरू होता है। इसलिए जब भक्त सेवा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए वो अपने आप को भगवान मान रहे हैं। कितना खतरनाक है देखिए मायावा दर्शन। तो हमेशा सेवा करते रहिए, अपने ओरिजिनल पोजीशन में सिचुएटेड रहिए। जहां हमने सोचा कि हम भगवान हैं, और जहां हमने सोचा कि हम स्वतंत्र हैं, जहां हमने सोचा कि हम ही कृष्ण हैं, हम ही नारायण हैं, वहां फंस जाएंगे। इसलिए जब तक हम सेवा करते रहेंगे, इसलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं, ये बात को समझने के लिए कि असली जन्मदिन तो परम भगवान श्री कृष्ण का है। मेरा कोई जन्मदिन नहीं है, मेरा तो मरण ही हो रहा है हमेशा। किस बार का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है? एक व्यक्ति ने, नाम नहीं बताएंगे उसका, गुड़गांव में, इस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति और इस देश में शायद चौथे या पांचवें नंबर या तीसरे नंबर पर होगा, उस व्यक्ति ने अपना जन्मदिन मनाया लगभग 5 दिन के लिए। 100 करोड़ रुपए खर्च किए उसने, 100 करोड़ रुपए खर्च किए उसने अपने जन्मदिन में। बताइए कितने दुखी बात है। अमेरिका से उसने एक सिंगर बुलाया, उसको 20 करोड़ रुपए दे दिए। बताइए, ये है आज की समस्या, दुर्दशा। इसको कहते हैं भोक्ता की भावना, इसे ऐसे लोग भोगते ही रहते हैं। तो इस प्रकार जो है परम भगवान जो है वो क्या करते हैं, स्वयं वो भगवान जो है, मतलब यानी महाविष्णु जो है, वो मूल सृष्टि करते हैं, प्राइमरी क्रिएशन करते हैं, प्राइमरी क्रिएशन करते हैं। और इस प्रकार जो है, अब होता क्या, देखिए अब प्रोसेस क्या है क्रिएशन का, वो भी बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें किस तरह से क्रिएशन होता है। तो ये 5 जो तन्मात्राएं बताई जाती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और गंध और रस, तो ये जो है बेसिकली भगवान की काल शक्ति से इसका मिश्रण होता है। और साथ में इनके और भी होते हैं, जैसे सटल मेटल एलिमेंट्स हैं। सटल मेटल एलिमेंट्स का मतलब ये है कि जैसे हमने पहले बताया महतत्व है या मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इस सब का मिश्रण होता है। और इस तरह से फिर स्थूल पदार्थ जो है उत्पन्न होते हैं, ग्रॉस एलिमेंट्स उत्पन्न होते हैं उसमें से, और इस तरह से फिर इंद्रियां सारी हमारी दिखाई पड़ती हैं, जो सीट है, ऑर्गन्स हैं, ये सारे दिखाई पड़ते हैं जो अभी दिखाई दे रही हैं। और ये जो महत्त्व है, अहंकार है, मन है, बुद्धि है, ये सबको आंतरिक इंद्रियां बताया गया, इंटरनल सेंसेस। महत्त्व बताया इस भागवत में, भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में ये बताया कि महत्त्व जो है भगवान के चरणों में वास कर रहे। समाश्रित ये पद पल्ल प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुदीर वत्स पदम परम पदम 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 विपदम नतेशम। तो महत् पदम का मतलब है कि महत्त्व जो है भगवान के चरणों में वास कर रहे, महत्त्व। तो ये जो महत्त्व है, अहंकार है, मन है, बुद्धि, आंतरिक इंद्रियां मानी जाती हैं इस प्रकार से। और 5 वर्किंग इंद्रिया सेंसेस हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और इस प्रकार से स्थूल पदार्थ हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, और इस प्रकार से ये जो 5 हैं, और इस प्रकार से 24 तत्व बनते हैं। ये 24 तत्व हैं। तो इस प्रकार से 24 तत्व हैं। और श्रील जी गोस्वामी यहां तक बता रहे हैं कि जीव आत्मा को भी 25वां बताया गया, परमात्मा को 26वां बताया गया। तो इस प्रकार जो है, लेकिन काल जो है उसको अलग से नहीं गिना जाता है। हालांकि काल का वर्णन यहां पर आया है कि काल शक्ति के द्वारा भगवान सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन काल को अलग से नहीं गिना जाता है। अब क्या होता है कि जो 5 जो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश जो हैं, उसको और आगे ज्यादा उसका मिश्रण करना पड़ता है। और वो मिश्रण होता है पंचीकरण प्रोसेस के द्वारा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पंचीकरण। ये सब शिलजी गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं तत्व संदर्भ में। तत्व संदर्भ सभी भक्तों को पढ़ना चाहिए। भागवत में जो फिलॉसफी दी गई है और भागवत के जो तत्व हैं, बड़े फर्स्ट क्लास एलैबोरेट तरीके से समझाया उन्होंने, है ना। तो तत्व संदर्भ में जो कि श्रील बलदेव विद्याभूषण ने उसके ऊपर टीका भी दी है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के द्वारा जल्द ही पब्लिश होने वाली है, गोपी पुराण धर्म ने इसका अनुवाद किया है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्रत्येक एलिमेंट्स हैं, ईच ऑफ द एलिमेंट्स जो है, जैसे कि उसका मिक्सचर होता है किसके साथ, अन्य 4 तत्वों के साथ, महत्त्व, मन, बुद्धि और अहंकार के साथ इसका मिश्रण होता है, एक विशेष दर में, सर्टन रेशियो के साथ मिश्रण होता है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इन मिश्रित पदार्थों को लेकर वो गौण सृष्टि करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। मां विष्णु जो है वो दृष्टिपात करते हैं, हमने जैसे बताया, लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण को तो दृष्टिपात करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार ये यहां पर वर्णन दिया गया है, बड़ा सुंदर वर्णन बताया गया श्रील जी गोस्वामी के द्वारा। लेकिन याद रहे ये जितना भी सृष्टि का कार्य है ये भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। भगवान की अध्यक्षता में नहीं होगा तो सृष्टि होना असंभव है। कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति बैठा हुआ है और कुछ कर नहीं रहा है। ब्राह्मण अगर देखा जाए, ब्राह्मण को देखकर ऐसे लगेगा कि ब्राह्मण को लगेगा कुछ नहीं कर रहा है वो, लेकिन देखा जाए तो ब्राह्मण के मार्गदर्शन में ही पूरा समाज चल रहा है, उसकी बुद्धि के द्वारा, उसकी चेतना के द्वारा। तो स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो इसलिए कई बार होता है, एक बार ऐसे ही हुआ कि प्रभुपाद एक स्टोरी सुनाते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा कि एक बार एक राजा था, उसके जो मंत्री हैं उसको बहुत अधिक धन दिया जा रहा था, 10,000 सोने की मुद्राएं मिलती थी हर महीने उसको। तो कई जो मजदूर थे जो प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे थे वो आके उन्होंने जो है प्रश्न किया राजा से। उन्होंने कहा, राजा बताइए महाराज, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं सुबह से रात तक, 12-13 घंटे हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों को तो कुछ अधिक धन मिलता नहीं है, गरीबी छाई हुई है घर में, और आप ये मंत्री आपके साथ बैठा रहता है पूरे दिन कुछ करता नहीं है, उसको आप 10,000 सोने की मुद्राएं देते हैं हर महीने, ये हमें समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करो हमारा जो राज्य में जो हाथी हमारा है ना, हमारा राजा का जो राज्य का हाथी, हमारा जो हाथी है उसका वजन कितना है ये नाप के बताओ। तो 100 मजदूर ने कहा कौन सी बड़ी बात है, हम 100 लोग हैं पता लगा लेंगे। वो हाथी बड़ा विशाल था, बड़ी शक्ति थी उसमें, वो हाथी को हिलाने की कोशिश की सबने मजदूरों ने, वो हाथी हिल ही नहीं रहा था उससे, 100 लोगों से भी नहीं हिल रहा था, उसकी पूंछ तक नहीं हिला पाया वो। तो वो लोग बेचारे थक गए, ऐसे उनको 3 दिन का समय दिया था। तो 3 दिन बाद वो बेचारे आए बेहाल होकर असहाय अवस्था में, बोले कि महाराज हमसे तो हिला भी नहीं, उसकी पूंछ तक नहीं हिला पाया हम। तो उन्होंने कहा महामंत्री आप बताएं इस हाथी का वजन कितना है। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूं, मैं अकेला हूं, ये तो इतने सारे लोग हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो महोत को बिठाया गया हाथी के ऊपर, महोत हाथी को लेके गया आगे और उसके बाद वो लोग नदी के पास पहुंचे, वहां बहुत बड़ी नाव थी, उस नाव के साथ एक मेजरिंग स्केल लगा हुआ था, हाथी को उसमें चढ़ाया गया। हाथी जैसे चढ़ा तो उसका साथ में जो स्केल था उसमें जो है उसका वेट मेजर हो गया, और उसके बाद फिर राजा को आके उसने मंत्री ने आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे का कार्य हुआ, 1 घंटे के बाद वापस आ गया, उन्होंने कहा महाराज इस हाथी का इतना वजन है। तो राजा हैरान हो गया, बोलते ये लोग 3 दिन लगा रहे और तुमने 1 घंटे बता दिया। तो उसने मंत्री को बताया, मंत्री ने बताया राजा को इस तरह से मैंने किया। तब उन्होंने मजदूरों को बुलाया महाराज ने, राजा ने, उन्होंने कहा देखो मजदूरों इसलिए मैं इसको धन देता हूं इसकी बुद्धि के लिए। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें देखने में लगेगा कि व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सारा खेल तो मस्तिष्क का है, ब्रेन का है। ब्रेन अगर देखें भी आप शरीर में तो ऐसा लगे कुछ नहीं कर रहा है ब्रेन, है कि नहीं, बस बाल ही उग रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है, वो भी बाल भी जो है गंदे हैं उनको भी शेव करना पड़ता है, तो इस ब्रेन का कोई काम नहीं है, इसको काट दो। लेकिन सारा जो डायरेक्शन मिल रहा है शरीर को वो ब्रेन से मिल रहा है कि नहीं। लेकिन देखने में क्या लगता है, आप चल रहे हैं, पांव चल रहा है आपका, पांव कार्य कर रहा है, हाथ कार्य कर रहा है, पेट काम कर रहा है, दिल धड़क रहा है, लेकिन सर तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से परम भगवान श्री कृष्ण देखने में लग रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं सिर्फ, माखन चोरी कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, ये सब क्या है। लेकिन देखा जाए तो परम भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं, वही सभी कारणों के कारण है। एक बार सुन तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने पूछा, क्या पूछा उन्होंने, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद आप मुझे बताएं कि मैं अपने आप को तुच्छ कैसे मानूं, इनसिग्निफिकेंट कैसे मानूं। तो प्रभुपाद ने कहा ये देखिए, भगवान के जो पुरुष अवतार हैं उनके महाविष्णु के श्वास से ही जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान फिर से प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, फिर सभी जीवात्मों के साथ बढ़ते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। इस एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं हमारे ब्रह्मांड में, 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, उसमें से ये भूलोक है और भूलोक में कई कॉन्टिनेंट्स हैं, इन कई कॉन्टिनेंट्स में जो है कई जो पृथ्वी में आने की, इस भूलोक में जो पृथ्वी है वो इसमें कई कॉन्टिनेंट्स हैं और इस कई कॉन्टिनेंट्स में जो है मतलब कई देश हैं और कई देश में जो है इस देश में कई शहर हैं और इस शहर के अंदर जो है कई स्ट्रीट्स हैं और स्ट्रीट्स में कई घर हैं और उसमें से एक ये मंदिर है हमारा। उस मंदिर में भी जो है कई कमरे हैं, उस कमरे के अंदर एक कमरा है, उस कमरे के अंदर तमाल कृष्ण बैठा है। तो प्रभुपाद कह रहे ये तुम्हारी स्थिति है, दिस इज योर पोजिशन। तो देखा जाए परम भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर एक बहुत विशेष बात बताई गई है जिस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। यहां पर बताया गया है आखिरी लाइन प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जब कोई जीवात्मा स्वतंत्र ईश्वर या भगवान होने का अभिमान दिखाता है तो इसे उसकी मूर्ता समझनी चाहिए। ऐसी मूर्ता का वर्णन अगले श्लोक में हुआ है, ऐसी मूर्ता का वर्णन अगले श्लोक में हुआ है, वो आप कल सुनिएगा, है ना। तो हम मूर्ता का वर्णन तो नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर एक बात बताई, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्र होने की जो भावना है कि भारत स्वतंत्र हो गया है या स्वतंत्रता के लिए हम लड़ रहे हैं, हम स्वतंत्र सेनानी हैं, है ना। तो ये सब जो है ये माया का प्रकोप है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, बार बार प्रभुपाद कोट करते हैं, जो अपनी भूमि को, अपने जन्मभूमि को पूजनीय मानता है वो क्या है, गधे और गाय के समान है ना। ऐसे लोगों को लोग महात्मा का दर्जा देते हैं, दुख की बात। तो कहने का स्वतंत्र होने का मतलब क्या है, स्वतंत्र होने का मतलब है कि आपके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। अब भक्त भी जब स्वतंत्र होने लग जाते हैं, भक्त के अंदर, भक्तों के अंदर भी स्वतंत्रता की भावना आ जाती है, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हम दो डिवीजन, तीन डिवीजन बनाए हमने इसमें, पहला समझिएगा, पहला है डिवीजन इंडिपेंडेंस का, दूसरा है डिवीजन डिपेंडेंस का, तीसरा है इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। अब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। पहले हम समझने का प्रयास करेंगे इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम लोग फिलॉसफी बोलते रहे और लोग उसको अप्लाई ना कर पाए अपने ऊपर, तो वो भी अच्छी बात नहीं। तो थोड़ा सा इसमें हमने एक शब्द निकाल लिया प्रभुपाद जी को, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं सेवा में। तो इंडिपेंडेंस के क्या क्या लक्षण हैं, जब भक्त स्वतंत्र होते हैं तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। फर्स्ट लक्षण है लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता में कमी। जो व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहते हैं, जो किसी अथॉरिटी को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो उनके अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होगा, विनम्रता की कमी होगी। दूसरा क्या है, अथॉरिटी से कोई मतलब नहीं, हमारा कोई अथॉरिटी नहीं, हम खुद ही अथॉरिटी हैं, हमारे आगे पीछे कौन नहीं है, है ना। एक बार एक मूवी देखी थी हमने, उस मूवी में वो जो हीरो था वो लाइन में खड़ा नहीं था, आगे चला गया वो, तो पीछे से व्यक्ति चिल्लाए, ए पीछे आके खड़े हो जाओ। तो उस हीरो ने बोला, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। वो याद हो, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो कई बार भक्तों में भी ये भावना आ जाती है, हम जहां खड़े हैं वहीं से चढ़ना मत बढ़ना चाहिए, हम जहां खड़े होते हैं वहीं से प्रसाद मिलना चाहिए, हम वरिष्ठ भक्त हैं, हमें पीछे क्यों खड़ा किया गया। तो इस गुरु पूजा में भी जब फुल ऑफर करते हैं, तो कोई अथॉरिटी अथॉरिटी कोई नहीं है, सब बेकार है, हम ही स्वयं अथॉरिटी है। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है गुरु से, या फिर हमारा कनेक्शन डायरेक्ट कृष्ण से, ये सब ऐसे ही है। जो सब कनिष्ठ भक्त हैं, ये भी कनिष्ठ है, मैं भी कनिष्ठ, अंतर क्या है, ये पुराना कनिष्ठ है, मैं नया कनिष्ठ हूं, फिर भी अच्छा हूं मैं, स्टिल आई एम बेटर देन हिम, आई एम न्यू कनिष्ठ, न्यू प्रोडक्ट। ये पुराना कनिष्ठ है, पूरा पुराना हो चुका है, अभी तक कनिष्ठ ही है। और जो स्वतंत्र होते हैं उनके अंदर यश कमाने की इच्छा, डिजायर फॉर फेम होती है, क्योंकि स्वतंत्र इसलिए होना चाहते हैं ताकि उनको पूछे कोई, है ना, हमें तो कोई नहीं पूछना, इन्हीं को पूछ रहे हैं सबको, सब लोग, तो इसलिए वो यश कमाने की इच्छा रहती है। और फिर ये बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, अब पता नहीं यहां होता है कि नहीं होता, लेकिन कई जगह होता है। ये है कि मान लो मंदिर में कई अधिकारी हैं, अब एक अधिकारी से काम ना हुआ, जो अथॉरिटी आपकी एक्चुअल अथॉरिटी है, इमीडिएट अथॉरिटी है, जिनसे आपको रिपोर्ट करना है, जिसको जिनको आप रिपोर्ट करना है, जिनकी अंडर सेवा करना है, उनसे कार्य हो नहीं रहा, उनसे बिल पास नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्वतंत्र नेता के पास चले जाओ जो आपका कार्य पूरा कर दे। आप समझ रहे हैं, इसको कहते हैं भौतिक दुनिया में जुगाड़ू। भौतिक इस संसार में इसको जुगाड़ू शब्द कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जुगाड़ू होना चाहिए आपका आज के समय में, अरे ऐसा ना हो तो वैसे करा लो, इससे ना हो तो उससे करा लो, समझदार तो जॉब मस्ट बी डन। ये है स्वतंत्रता का लक्षण। यानी ऐसे जो स्वतंत्र जीव हैं, ऐसे स्वतंत्र नेता के पास जाएंगे जहां से हमारा कार्य हो जाए। एक भक्त था बेचारा, वो अथॉरिटीज के पास कई बार जा चुका था, उसको गाड़ी चाहिए थी प्रचार के लिए, वो हो नहीं रहा था, तो बेचारा परेशान हो गया। वो बोलता है प्रभु जी तो इतनी आसानी से इसको वो नहीं करेंगे, सैंक्शन नहीं करेंगे। वो दूसरे नेता के पास चला गया, वहां से करा लिया उसे। वो नेता भी स्वतंत्र है और ये खुद भी स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र जो अनुयायी हैं, यानी स्वतंत्र जो ऐसे भक्त हैं, वो स्वतंत्र नेता के पास जाते हैं और स्वतंत्र स्वतंत्र का जो है समावेश हो जाता है और वो स्वतंत्रता जो है और प्रबल हो जाती है। वो फिर दल बन जाता है, स्वतंत्र दल। एक पार्टी भी है, इंडियन इंडिपेंडेंट पार्टी। कितने दुखी बात। और ऐसे स्वतंत्र जो होते हैं भक्त, उनमें अपराध की भावना निश्चित रूप से बड़े हाई रेट पे होती है, हाई लेवल पर होती है। अब देखिए हम आते हैं डिपेंडेंस में। डिपेंडेंस में क्या क्या होते हैं, क्वालिटीज एग्जिबिट होते हैं। देखिए जो भक्त निर्भर होते हैं सदैव अपने अधिकारियों के लिए या अपने वरिष्ठ भक्तों के लिए, हमेशा निर्भर रहते हैं सेवाओं के लिए, उनमें शरणागति का लक्षण होता है, नम्रता का लक्षण होता है, हमेशा अथॉरिटीज को रिपोर्ट करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और सारा श्रेय जो है अपने वरिष्ठ वैष्णवों को देते हैं, गुरु परंपरा को देते हैं। उनका कार्य हो रहा हो या ना हो रहा हो, उनको रिजल्ट मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, फिर भी जिनके नियुक्त, जिनके अंडर उनको रखा गया है, जिनको जिनके साथ उनको नियुक्त किया गया है, उनकी सेवाओं करते हैं। तो ये तो खैर उनके लिए कहा गया जो भक्त बेचारे, जो सामान्य भक्त है। लेकिन कई बार जो है मैनेजर्स के साथ क्या समस्या आती। अब दोनों तरफ से समस्या है। अब मैनेजर्स क्या करते हैं बेचारे, अब उनको अपने अथॉरिटीज को फॉलो करना है कि नहीं। लेकिन होता क्या है कि अब वो जब देखते हैं कोई भक्त सुन ही नहीं रहा उनकी बात, अब वो कहने के लिए तो मंदिर के अधिकारी है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, टेम्पल कमांडर है, लेकिन कोई उनको जो है उनके सामने मूंगफली का दाना भी नहीं डाल रहा है ना। वो बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, लेकिन वो भक्तों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात को, है ना। और समय कहीं झगड़े हो जाते हैं, तर्क वितर्क हो जाते हैं। तो इसलिए जो मैनेजर सदैव परेशान रहते हैं इस तरह से, है ना, उनका स्वधर्म है परेशान रहना, चिंतित रहना। तो इस प्रकार जो है दोनों तरह से समस्या है। अब प्रभुपाद ने क्या बोला है कि डिवोटी मस्ट बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। अब देखिए दोनों में अंतर है, इंडिपेंडेंट होना और इंडिपेंडेंट थॉटफुल होना। तो कई बार ऐसे कोट भी करते हैं कई भक्त, प्रभुपाद ने कहा इंडिपेंडेंटली थॉटफुल होना चाहिए, इसलिए हम क्यों पूछे आपसे। इंडिपेंडेंटली थॉटफुल का मतलब है कि वो अथॉरिटी के अंडर सेवा करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, बट एट द सेम टाइम अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, अपनी सिंसियरिटी का उपयोग करता है उस कार्य को अच्छी तरीके से करने के लिए और मैक्सिमम रिजल्ट्स देने के लिए गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। ये प्रभुपाद चाहते थे। प्रभुपाद चाहते थे कि डिवोटीज मस्ट बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। प्रभुपाद से भेजते थे कई सेंटर्स खोलने के लिए, फिर उन भक्तों को इंस्ट्रक्शन देते थे, फिर भक्त अपना इंटेलिजेंस यूज करके जो है उन कार्यों को पूरा करते थे। तो इस प्रकार जो है हम लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए, जैसे हम बता रहे थे शुरू में, कि वास्तव में तो कोई स्वतंत्र नहीं है, परम भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में स्वतंत्र है, क्योंकि उनको उनका ही सब कुछ है और वो किसी उनका कोई कारण नहीं है, तो इसलिए सब कुछ उन्हीं का है। चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले आए, तो चैतन्य, अब इतना समय नहीं, लेकिन हम और भी चर्चा करने वाले थे तो यहीं पे हम विराम देंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, ध्यान रहे कि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे 500 साल पहले, तो उस समय भी यही समस्या थी। क्या समस्या थी? अधिकांश लोग सोचते थे कि नारायण जो है वो कारण है कृष्ण के, यानी कि नारायण के अवतार या विष्णु के अवतार है कृष्ण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा ये बात चैतन्य चरितामृत में। और इसी कारण से जब वो दक्षिण भारत गए और वेंकट भट्ट से भी मिले, वो वेंकट भट्ट के साथ जो संवाद है बहुत ही सुंदर संवाद है, पढ़ने लायक, मध्य लीला अध्याय 9 में इसका वर्णन किया गया है। और वेंकट भट्ट को कैसे चैतन्य महाप्रभु ने कन्विंस किया कि वास्तव में नारायण सभी कारणों के कारण नहीं है, कृष्ण है सभी कारणों के कारण, वो तो उनके विस्तार है केवल। तो इस प्रकार से नारायण के पास, हालांकि नारायण तत्व में तो नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन जो चार अद्भुत गुण जो पाए जाते हैं कृष्ण में अतिरिक्त, वो किसी में नहीं पाए जाते, यहां तक कि नारायण में नहीं पाए जाते हैं। और ये जो नारायण की, जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, विशेष रूप से उनकी जो माधुरी लीला है, उनकी जो रास लीला है, वो लक्ष्मी जी को भी प्रभावित करती है, लक्ष्मी जी को भी आकर्षित करती है, हालांकि उनको रासलीला में भाग लेने का मौका नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप में, अपने वैकुंठ के भाव में, अपने ऐश्वर्य के भाव में वो प्रवेश करना चाहती हैं, गोपियों के अनुगत्य नहीं होना चाहती। तो ऐसे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो नित्य परिकर जो ब्रजवासी हैं, या ऐसे रासलीला में भाग लेने के लिए गोपियों के अनुगत होना बहुत जरूरी है, तभी यह संभव हो पाएगा। और तो और श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि गोलोक वृंदावन में तो कोई जानता ही नहीं है कि कृष्ण परम भगवान, क्योंकि वहां तो भगवान के साथ सबका अंतरंग रिश्ता है, अंतरंग संबंध है, सखा के रूप में, पति के रूप में, अन्य कई सारे संबंध हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण ही वास्तव में मूल कारण है, सभी कारणों के कारण है, और इसलिए स्वतंत्रता की भावना हमें छोड़नी चाहिए इस बात को जानकर कि कृष्ण ही परम भगवान है, वही परम नियंता है, वही वास्तव में स्वतंत्र, परम स्वतंत्र है। हमारी स्वतंत्रता धरी की धरी रह जाएगी जब सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा, जब हमें देह का परित्याग भी करना पड़ जाएगा, तब कुछ भी नहीं बचेगा। देखा जाए तो किस चीज के लिए हम स्वतंत्र हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो बोलते हैं कि हम ये प्लैनेट्स को कंट्रोल करेंगे, हम इस क्रिएशन को कंट्रोल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं जब उनके पेट में गड़बड़ होता है तो खुद का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। देखिए पूरे जीवन भर निर्भर रहे, बचपन से लेकर निर्भर रहे। देखने के लिए भी हमें चश्मा चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, बैठने के लिए जमीन चाहिए, सूंघने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, है कि नहीं, खाने के लिए भोजन चाहिए, क्या नहीं चाहिए हमें बताइए। लेकिन वास्तव में हमें क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए केवल। और यही एकादशी में अनुभव करते हैं हम लोग, निर्जल एकादशी में, कि हमें कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला उस दिन। तो ये निर्भरता की भावना कब आती है? जब हम कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, कृष्ण का सेवक बनना चाहते हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, इस बात की अनुभूति जब हम कर लेते हैं, तो इस तरह से पूर्ण तरह से निर्भर रहता है भगवान का शुद्ध भक्त, भगवान के ऊपर पूर्ण तरह से शरणागत रहता है, पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, यह जानते हुए कि सब कुछ तो कृष्ण का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आइए हम सब जो है परतंत्र निर्भर होने का प्रयास करें भक्तों के समाज में रहते हुए। क्योंकि होता क्या है, और स्वतंत्र होने की भावना किसमें पाई जाती है? जन्म ऐश्वर्य शुतुर श्री भी, जिसका अच्छे कुल में जन्म हुआ है, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है, विद्वत्ता प्राप्त हुई है, बहुत सारे डिग्रीज हैं, है ना, सुंदरता है या धन है, सौंदर्य है ना, तो ये सब जो क्वालिटीज जब रहती हैं तो नेचुरली लगता है कि हम भक्तों के ऊपर निर्भर क्यों रहे। जब ब्रह्मचारियों के पास भी अगर धन होगा तो फिर वो किसकी बात सुने? किसकी बात सुने? हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है, हम जा रहे हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में क्योंकि हमारे पास धन है। अगर आप कंगाल होंगे तो कैसे जाएंगे बताइए? आप जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए कई बार जो भक्त हैं वो जब वैष्णव समाज को छोड़ते हैं तो उनके अंदर क्या अहंकार होता है कि हम इनके ऊपर निर्भर नहीं है। क्यों? हमारे पास धन है भार, हमारे पास अपना क्वालिफिकेशन है, हमारे पास अपनी विद्वत्ता है, हमने अपने बलबूते पर जिएंगे, हम इनके ऊपर क्यों निर्भर रहे, हम वैष्णव समाज को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए यह समस्या है। जब आप पूरी तरह से कंगाल होंगे, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली थावी तवा पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे लग रहा हूं मैं तो कंगाल हूं, कृष्ण आपके हैं, आपके पास सब कुछ है, तो आपके पीछे मैं जब लूंगा तो मुझे भी कृष्ण मिलेंगे। तो इस प्रकार से कंगाल होना भक्ति में बहुत जरूरी है, हर तरीके से कंगाल, कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे पास, तब हम असहाय अवस्था में कृष्ण के सामने जाके गिड़गिड़ाएंगे कि आप ही परम नियंता है, मेरा कुछ नहीं है, जो लागे तेरा, क्या है मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा भूल गया जो भी है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम सब इसका ध्यान रखें और वृत्तासुर के इस प्रवचन का पूरा लाभ उठाएं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ।
हरे कृष्ण भजन, बहुत बहुत धन्यवाद भजन, बहुत ही प्रासंगिक चीजें थी सारी। तो जैसा आपने अभी बताया, खासतौर पर भक्त जो लोग आश्रम में रहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, तो उनके लिए स्वतंत्रता की परिभाषा जो है मतलब बाहर से थोड़ी सी अलग है, तो जैसे अक्सर ब्रह्मचारी को ये प्रशिक्षण हम लोग मतलब आश्रम ये प्रशिक्षण देने की कोशिश होती है, कुछ हद तक प्रशिक्षित होते भी हैं कि जब वो बाहर जाएं, जब वो सर्वजन जनसाधारण के पास जाएं, वहां पे प्रचार करें, अपनी सेवा करें, तो कुछ चीजों का जो है वो खास तौर पर ध्यान रखें, जैसे बाहर मतलब लोगों से मेल मिलाप किस तरीके से करना है, आदान प्रदान किस तरीके से करना है। तो रोजी अक्सर ये होता है कि इस चीज पे मतलब क्योंकि बस भी इसी चीज का कि हम अपना अपनी तरफ से अपने आप को प्रशिक्षित कर सकते हैं। पर प्रभु जी जब आदान प्रदान का मतलब है उसमें दोनों पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, हम जो प्रशिक्षित हैं वो और जो प्रशिक्षित नहीं है वो भी। तो फिर कई बार जैसे होता है ऐसे देखा जाता है जहां पर जाकर ब्रह्मचारी धीरे धीरे फिसलते हैं या वीक पड़ते हैं, उनके अंदर ऐसी कोई भी दुर्भावना आती है, मसलन आप बाहर गए और बाहर हमको बहुत कुछ कोटि का साधु माने जाते हैं, है कि नहीं अलग बात है, तो वो साधु सेवा करते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए कि कोई साधु गया, उसको उसने बोला कि ये लीजिए आप घड़ी लीजिए, ये लीजिए आप रुपया लीजिए, ये लीजिए आप हमारे घर में आयुक्षात कीजिए, ये लीजिए हमारे घर में चरण डालिए, तो इसके लिए मतलब सामने वाले से हम क्या लेके चल सकते हैं? मतलब हमें तो बताए नहीं करना नहीं करना नहीं करना, बट लाइक कितने देर तक ये चीज चल सकता है कि सामने वाले की क्या जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ प्रचारक उसी की जिम्मेदारी है
या सामने वाले की जिम्मेदारी ये है कि जब ब्रह्मचारी घर पे आए तो उनको प्रसाद जरूर ऑफर किया जा सकता है, लेकिन ऐसी चीजें ऑफर ना करें जिससे वो भक्त बिगड़ जाए। ये गृहस्थ भक्तों की जिम्मेदारी है कि हम सोचें कि हम ये देना चाहते हैं, उनको धन देना चाहते हैं या उनको घड़ी देना चाहते हैं या उनको जो है कपड़े देना चाहते हैं या उनको दक्षिणा देना चाहते हैं, इस सब से जो है ब्रह्मचारी बिगड़ जाएंगे। उनको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, उनको आप भिखारी रहने दीजिए, ये सहायता आपको करनी पड़ेगी गृहस्थ भक्तों को। ब्रह्मचारी भक्तों को बिल्कुल गरीब रखिए आप, उनको ऐसा भिखारी की अवस्था में रखिए, यही उनके ऊपर दया है। आप उनको चेक दे सकते हैं, प्रोजी बता रहे हैं, जो इस्कॉन के नाम पे हो, उनके नाम पे नहीं, ये भी याद रखिए, आप चेक दे सकते हैं इस्कॉन के नाम पे, लेकिन इसी भक्त के नाम पर नहीं होना चाहिए। तो जब वो कंगाल रहेंगे, जब पता चलेगा कोई गृहस्थ भक्त सपोर्ट ही नहीं कर रहे हमें, तो फिर आएंगे वापस राधिका रमन जी के पास, फिर हाथ जोड़ेंगे। लेकिन जहां आपने उनका जेब भर दिया, उनके बैंक अकाउंट को जो है मजबूत कर दिया और उनको माला माल कर दिया, तो फिर उनकी निर्भरता जो है मंदिर में भक्तों के प्रति वो समाप्त होने लग जाएगी और आकर्षण जो है श्रवण कीर्तन। भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं 1885 में सज्जन तोषणी उन्होंने पत्रिका लिखी, उन्होंने कहा कि तथाकथित वैष्णव जो है गंगा जी के किनारे जो है तिलक लगाते हैं, तिलक लगाने के बाद वो विचार करते हैं आज हम इस घर में जाएंगे, वहां मालपुआ मिलेगा, वहां लूची चीनी मिलेगी, वहां मिष्टी दही मिलेगा, वहां संदेश मिलेगा, वहां ये मिलेगा, वहां मिलेगा, साथ में दक्षिणा मिलेगी। भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं जैसा वो विचार करते हैं, इस तरह से जब विचार करते हैं तो सो कॉल्ड वैष्णव वो फिर कर्मकांडी बन जाते हैं, दे आर नॉट वैष्णव एनी मोर। भक्तिनोद ठाकुर ऐसा कह रहे हैं। तो जहां दक्षिणा मिल रही है ठाकुर जी के लिए होनी चाहिए, अपने लिए नहीं। तो इस बार कई बार बोलते हैं नहीं ब्राह्मण है दक्षिणा लेने में क्या है, ब्राह्मण दक्षिणा लेता है गुरु और कृष्ण के लिए, अपना जेब भरने के लिए नहीं। तो ऐसे जब करेंगे तो फिर खतरे का सिग्नल है हमारे लिए। तो इसलिए भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसे जो सो कॉल्ड वैष्णव वो कर्मकांडी होते हैं, तो बेसिकली हम लोग बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम लोग जब प्रचार में जाएं तो ये सोच के जाएं कि हम लोग गुरु और कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जो भी हम प्रचार कर रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए।
हमारे जो संस्कार होते हैं मन से भी जो उम्र होते हैं वो चेतना में होते हैं, तो चेतना से मतलब क्या हमारी आत्मा में होते हैं संस्कार?
आत्मा से रिलेटेड कॉन्शियसनेस।
लेकिन जब भगवान जो कृष्ण बताते हैं कि आत्मा की ये प्रकृति है, तो फिर वो उसमें कैसे आ जाता है आत्मा में? तो
नहीं, जब जीव स्वतंत्र, देखिए आप समझने का प्रयास करिए, आत्मा अपने आप में पवित्र है, लेकिन जीव की दूषित अवस्था क्या होती है? जीवात्मा की दूषित अवस्था है जैसे ही वो स्वतंत्र होने की भावना रखता है भगवान से अलग होकर, वो उसकी दूषित अवस्था है। इस प्रकार का भाव रखना कि मैं स्वतंत्र हूं, दैट इज कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। अब ये नहीं कि उसमें ब्लैक या दिखाई देगा, ब्लैक कलर में दिखाई देगा या ब्राउन कलर में दिखाई देगा, तो कंटेमिनेटेड है उसका मतलब भाव। कॉन्शियसनेस का मतलब, कंटेमिनेट कॉन्शियसनेस का मतलब यह है कि वो अपने आप को स्वतंत्र मान बैठा है, अपने आप को भोक्ता मान बैठा है, ये उसका कंटेमिनेशन है। तो जब आत्मा को दूषित बताया जाता है, इंप्योरिटी बताया जाता है सोल में, तो उसका मतलब यह है इट्स अ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की मैं इंडिपेंडेंट हूं, उसको कहते हैं कंटामिनेशन। और जहां ये कॉन्शियसनेस ठीक हो जाए वहां कॉन्शियसनेस आपका प्योर हो गया।
फिर मन का क्या कार्य होता है?
मन का कार्य प्रोसेसिंग एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर पर बैठे हैं, कुछ इनपुट दे रहे हैं वहां पर, है कि नहीं, फिर उसका आउटपुट निकलता है। तो जो स्क्रीन है, जो कंप्यूटर है आपका, वो प्रोसेसर है बेसिकली, और प्रोसेसर के द्वारा जो है बेसिकली आपको आउटपुट्स मिलते हैं, है कि नहीं। इसी तरह से माइंड भी प्रोसेसिंग एलिमेंट है, बट इट इज नॉट द सोर्स। सोर्स इज द कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में संस्कार भरे हुए हैं, वो प्रोसेस होकर माइंड के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं। माइंड एक प्रोसेसिंग एलिमेंट है, मशीन है, जिसके द्वारा वो संस्कार दिखाई देते हैं मन के द्वारा, जप करते हुए, स्मरण करते हुए, वो सारे संस्कार दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो जनरेट हो रहे हैं कॉन्शियसनेस। इसलिए इस कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का तरीका केवल हरिनाम है, वो हरिनाम के द्वारा ही वो कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होगा। जब कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो जाएगा तो मन बुद्धि अहंकार तो हो ही गया पवित्र। तो रूट को पकड़ना है, रूट क्या है? कॉन्शियसनेस। ठीक है, फॉल्स ईगो बेसिकली महत्त्व का एक मैनिफेस्टेशन है, महत्त्व का ही जो है उत्पन्न होता है फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो बेसिकली क्या है कि एक और भी ज्यादा नेक्स्ट लेयर जिस कॉन्शियसनेस का बता दें। कॉन्शियसनेस पे देखिए थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी रहता है क्योंकि आत्मा से कनेक्टेड है वो, आप समझ रहे हैं। फॉल्स ईगो बिल्कुल एक मेटीरियल एलिमेंट है, सटल मेटीरियल एलिमेंट है, उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सटल डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से महाविश्व जो दृष्टिपात करते हैं दैट इज सदाशिव, और वही सदाशिव अपना एक्सपेंशन करते हैं रुद्र के रूप में, जो कि फॉल्स ईगो के प्रिजाइडिंग डीटी है। ठीक है ना, तो इस तरह से बड़ा ही सटल डिफरेंस है अहंकार में और चेतना में। तो चेतना जो है बेसिकली आत्मा का लक्षण है, और उस आत्मा के लक्षण चेतना में ये जब बात आ जाती है कि मैं ये शरीर हूं, दैट इज फॉल्स ईगो। तो ये बड़ा सटल डिफरेंस है दोनों में, मेजर डिफरेंस नहीं है, सटल डिफरेंस है। बट कॉन्शियसनेस का सोर्स आत्मा है और फॉल्स ईगो बेसिकली सटल मेटीरियल एलिमेंट है। तीन तरह के बताया था हमने, चौथा क्या है आप बताइए। हमने बताया था क्या क्या बताया था, वैकायिक बताया था, तेजस बताया था और तामस। चौथा क्या बताया? ठीक है, ठीक है।
जैसे ये संशय कई बार रहता है, जैसे आपने बताया कि चेतना दूषित हो रही है, यहां पर चेतना और चित्त में आप कोई मतलब पार्थक्य तरीके चल रहे हो, बदल तरीके चल रहे हो? चेत मतलब जैसे हम कहते हैं कि चेतना दूषित होगी तो क्या दूषित हो गया? मान लीजिए जो चीज दूषित नहीं होती वो है सचिद आनंद, यानी कि आत्मा जो कि स्पिरिचुअल है। मटेरियल को दूषित करना तो दूषित ही बनेगा, तो इसका मतलब ये मान के चलना पड़ेगा, मतलब क्या ऐसा मान के चल सकते हैं कि आत्मा का कोई एक पार्ट, एक एलिमेंट यानी कि चेतना वो कवर होती है या दूषित होती है?
क्योंकि चेतना को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सूर्य की रोशनी को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता। बट अगर कोई काला शीशा लगा ले अपने घर पे तो वो कंटामिनेशन, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को रोक रहा है। इसी तरह से जीव भी जो है आत्मा के असली प्रकाश को रोक रहा है, उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा जो है, तो इस तरह से काला पर्दा लगा लेता है और वो ही दूषित चेतना है, वो दूषित चेतना के रूप में प्रकट होती। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गुड प्रेमानंदे।